आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय वायु, जल और मृदा। ये कक्षा छठी के विषय विज्ञान का 17वां अध्याय है। और बच्चों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने इस अध्याय में पहले क्या पढ़ लिया है। तो बच्चों, क्योंकि हमने ये अध्याय पिछली क्लास में शुरू कर दिया था, तो हमने कुछ शुरुआत की बातें पढ़ ली थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब इस अध्याय की शुरुआत की थी तो आपको समझाया था कि वायु, जल और मृदा हर एक जीव जंतु, हर एक पौधे के लिए जो धरती पर मौजूद है, इनको अपना जीवन जीने के लिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आप लोगों को पता है कि सभी जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, और जो ऑक्सीजन होती है वो वायु में ही मौजूद होती है। तो हम कह सकते हैं कि वायु हम लोगों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद पानी के बारे में हमने बात की थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि पानी हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम उसको बिना पिए जीवन जीना हम इंसानों के लिए या किसी भी और जीव जंतु के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। आपको पता है कि एक दो दिन हम बगैर कुछ खाए तो रह सकते हैं, लेकिन बगैर पानी पिए एक दो दिन रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इंसानों के लिए, क्योंकि हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो पानी से ही बना होता है। उसके बाद हम लोगों ने मृदा के बारे में बात की थी। आप लोगों को पता है कि जो अनाज आप लोग खाते हो या फिर जो फल या सब्जियां आप लोग खाते हो, उसको उगाने के लिए आपको मृदा की जरूरत होती है। आप लोग इन सभी अनाजों को, दालों को, फलों को और सब्जियों को मिट्टी में ही उगाते हो और उसके बाद ही आप उसको भोजन में इस्तेमाल कर पाते हो। तो इस तरीके से हमने पिछली क्लास में इस अध्याय की शुरुआत की थी। उसके बाद हमने अध्याय को आगे बढ़ाते हुए वायु के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे आसपास की चीजें जैसे कि कागज के टुकड़े या फिर सूखे पत्तियां या फिर कपड़े जो धूप में हम सुखाने के लिए रख देते हैं, ये उड़ते हैं। उड़ते ये क्यों हैं? क्योंकि पवन जब चलती है, पवन जब वेग से चलती है, तो क्या होता है, ये अपने साथ में अपने आसपास की चीजों को उड़ा ले जाती है, और इसी की वजह से आप अपने आसपास की ये छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई देख पाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो वायु होती है वो कई सारे गैसों की और हवाओं की मिश्रण होती है। वायु रंगहीन होती है, इसका खुद का कोई रंग नहीं होता, ये गंधहीन होती है, मतलब इसकी कोई खुद की खुशबू या फिर दुर्गंध भी नहीं होता। वायु स्वादहीन होती है, मतलब इसका कोई स्वाद भी नहीं होता, ये ना खट्टी होती है, ना नमकीन होती है, ना मीठी होती है, ये किसी भी स्वाद की नहीं होती है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी ही धरती की ओर केवल ये वायु की परत है, वायुमंडल है, और वायुमंडल के होने की वजह से ही हमारी धरती पर जीवन मुमकिन हो पाया है। आपको ये मालूम ही होगा कि हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह हैं और उन्हीं में से एक ग्रह हमारी धरती है, और धरती पर ही केवल अभी तक जीवन खोजा जा चुका है, मतलब धरती पर ही जीव मौजूद हैं। तो ये जीव क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है क्योंकि हमारी धरती के चारों ओर वायु की एक परत है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल के होने के वजह से ही धरती पर जीवन होना मुमकिन हो पाया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी क्या खास बात है हमारी धरती पर कि केवल धरती पर ही जीवन मौजूद है और किसी और ग्रह पर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि धरती के ऊपर जो वायुमंडल है वही धरती को खास बनाती है, और वायुमंडल के होने की वजह से ही धरती पर जीवन की स्थापना हो पाई है। उसके बाद हम लोगों ने आगे वायु के घटक के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि वायु जो होती है वो काफी सारी चीजों से मिल करके बनती है, काफी सारी चीजों का मिश्रण होती है वायु, और इन सभी जो मिश्रण है, जो अलग अलग चीजों से जिनसे ये मिलकर बनी है वायु, इन्हीं सभी पदार्थों को हम वायु के घटक या फिर वायु के अवयव कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले वायु के घटक के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम मैंने आपको बताया था जल वाष्प। जल वाष्प को आसान भाषा में आप भाप भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर आप पानी को ज्यादा गर्म करने लगते हैं तो क्या होता है, पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है, और वो भाप में परिवर्तित होके उसी फॉर्म में, उसी अवस्था में, मतलब कि भाप की अवस्था में वो हमारे वातावरण में मिक्स हो जाता है, वायु में मिक्स हो जाता है, और जल वाष्प बन करके हमारे वायु में वो रहता है। हमने बात की थी कि जब आप लोग धूप में गीले कपड़े सूखने के लिए रख देते हैं और थोड़ी देर बाद जब आप देखते हैं कि आपके कपड़े पूरी तरीके से सूख चुके हैं, तो आप ये सोचते होंगे कि उसमें का पानी गया कहाँ। तो जो कपड़े गीले आपने छत पर सुखाए हैं, उसमें से जो पानी है वो धूप की वजह से, धूप की गर्मी के वजह से वो कपड़े भाप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसमें से जो पानी होता है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है और भाप में परिवर्तित होने के बाद जलवाष्प बन करके वो हमारे वायु में मिक्स हो जाता है। साथ ही में हमने बात की थी कि ये जो भाप होता है, जैसे ही वातावरण ठंडा हो जाता है तो ये भाप वापस से बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो हमें कभी कभी ओस के रूप में दिखाई देते हैं। तो ओस की मौजूदगी की वजह से ही आप कह सकते हैं कि हमारे वातावरण में जल वाष्प भी मौजूद होता है। उसके बाद हम लोगों ने अगले वायु के घटक के बारे में पढ़ा था, जो कि ऑक्सीजन था। और ऑक्सीजन के बारे में समझने के लिए, ऑक्सीजन की मौजूदगी हवा में समझने के लिए हमने गतिविधि एक की थी। और इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने एक खाली बर्तन लिया था, खाली पात्र लिया था, और उसके बीचों बीच आपने एक मोमबत्ती चिपका दी थी। और उसके बाद आपने क्या किया था, उस बर्तन में जिसमें आपने मोमबत्ती चिपकाई थी उसमें आपने पानी भर दिया था, करीब एक चौथाई आपने पानी भर दिया था। और उसके बाद आपने मोमबत्ती जला दी थी और उसके बाद आपने उस जलती हुई मोमबत्ती को एक खाली गिलास से, खाली कांच के गिलास से उस मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को ढक दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने मोमबत्ती को ढका था, जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से, जैसे ही आपने कांच के गिलास से ढका था, तो क्योंकि आपकी गिलास कांच की थी तो मैंने आपको ये कहा था कि जो पानी आपने बर्तन में पहले रखा था वो उसमें से कुछ पानी गिलास के अंदर गया होगा। तो आपको क्या करना था, आपको मार्क लगा देना था, आपको एक चिन्ह लगा देना था जहां तक भी गिलास के अंदर में पानी सबसे पहली स्थिति में, जब आपकी मोमबत्ती जल रही थी उस अवस्था में आपने पानी का लेवल माप लेना था, चेक कर लेना था, और उसको आपको वहां पर एक चिन्ह लगा देना था गिलास के ऊपर, आपकी कांच के गिलास के ऊपर जहां तक भी आपको पानी नजर आ रहा था वहां पर आपको चिन्ह लगा देना था। और उसके बाद आपको थोड़ी देर तक वैसे ही छोड़ देना था। थोड़ी देर के बाद आपने जब देखा था तो आपने ये देखा था कि थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ गई थी और साथ ही में गिलास के अंदर जो पानी का लेवल था वो लेवल बढ़ गया था। तो इन दो बातों के बारे में मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले मोमबत्ती बुझ क्यों गई थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें जो जलती हैं वो जल इसलिए पाती हैं क्योंकि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन की गैस उनको मदद करती है जलने में। ऑक्सीजन की गैस जो होती है वो चीजों को जलने में मदद करती है। और क्योंकि जब आपने गिलास को ढक दिया था, मतलब जब आपने मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया था, तो उस वक्त कुछ गैस यानी कि ऑक्सीजन की गैस गिलास में मौजूद थी और इसी वजह से कुछ देर तक तो आपकी मोमबत्ती जलती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बुझ गई। वो बुझ इसलिए गई क्योंकि मोमबत्ती ने सारा का सारा ऑक्सीजन जो गिलास में मौजूद था उसको इस्तेमाल कर लिया, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गया गिलास के अंदर वैसे ही मोमबत्ती बुझ गई थी। और उसके बाद दूसरी जो आपने ऑब्जर्वेशन नोट की थी, मतलब कि दूसरी गतिविधि, इसमें आपने दूसरी बात जो नोट की थी वो ये थी कि गिलास के अंदर पानी का लेवल बढ़ गया था। तो मैंने आप लोगों को इसके पीछे का कारण भी बताया था। आपको पता है कि जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गई थी गिलास के अंदर से तो मोमबत्ती बुझ गई थी। और क्योंकि जो गैस होती है वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है गिलास के अंदर, तो जैसे ही ऑक्सीजन की गैस पूरी इस्तेमाल हो गई तो वो जगह खाली हो गई थी, तो उसी जगह को भरने के लिए बर्तन से गिलास के अंदर पानी बढ़ गया था, जिसकी वजह से आपको गिलास के अंदर पानी का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मोमबत्ती का बुझना, थोड़ी देर बाद गिलास के अंदर जो मोमबत्ती आपने रखी थी थोड़ी देर बाद जलने के बाद इस मोमबत्ती का बुझना, ये दर्शाता है कि हमारे वायु में ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन वायु का एक घटक है। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा करीब 21% तक होती है। उसके बाद आगे हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस गतिविधि में आपने देखा कि थोड़ी देर बाद मोमबत्ती आपकी बुझ गई, तो वो बुझ इसलिए गई क्योंकि ऑक्सीजन के खत्म होते ही वहां पर केवल और केवल वो गैसें बच गई थी वायु में, जो गिलास के अंदर, वायु के अंदर जो गैस थी उनमें केवल वो गैस बच गई थी जो आग को बुझने में मदद करती हैं, जलने नहीं देती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस जो होती है। नाइट्रोजन की गैस जो होती है वो चीजों को जलने में नहीं बुझने में मदद करती है। इसीलिए जैसे ही गिलास के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो तो नाइट्रोजन की कंटेंट, नाइट्रोजन की मात्रा अपने आप ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से आपकी मोमबत्ती बुझ गई थी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे वायु में नाइट्रोजन मौजूद होता है और नाइट्रोजन भी वायु का एक घटक है, और हमारे वायु में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन गैस की ही होती है। लगभग 78% तक नाइट्रोजन हमारे वायु में होती है। उसके बाद आगे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारी धरती पर हैं, ये सभी के सभी जब सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान ये ऑक्सीजन की गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये वातावरण में छोड़ते हैं। और इसके साथ और भी कई चीजें, जैसे कि जब कोई चीज जलती है तो उस वक्त अगर ठीक से वो चीज नहीं जल रही है तो वो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, या फिर ठीक से जल भी रही होगी तब भी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यातायात में जितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि बस या फिर कार या फिर टैक्सी, स्कूटर, बाइक, ये सभी के सभी जो गाड़ियां होती हैं, ये सभी के सभी क्या करती हैं, ये फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं, मतलब कि या तो पेट्रोल का या डीजल का इस्तेमाल करती हैं। तो जब ईंधन जलता है, पेट्रोल या डीजल जलता है, तब ये क्या करता है, जलते वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वातावरण में छोड़ता है। और केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं, अगर आप लकड़ी जलाएं या फिर गोबर के उपले वगैरह जलाएं तो उसको जलाने पर भी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सभी के सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वातावरण में आ रही है तो ये वायु में ही मिक्स हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वायु की घटक होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राकृतिक मात्रा जो हमारे वातावरण में मौजूद है वो है करीब 0.03%, मतलब कि वायु का 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की गैस से बना हुआ है। उसके बाद हमने अगले घटक के बारे में बात की थी, जो थी धूल और धुआं। आप लोगों को पता है कि जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं तो उसके जलने से धुआं उत्पन्न होता है। ये जो धुआं होता है इसके साथ में कुछ काले काले सूक्ष्म कण, मतलब छोटे छोटे से कण आप लोगों को दिखाई देते हैं, जो धुएं के साथ में हमारे वायु में मिक्स हो जाते हैं। तो ये धुआं जब वायु में मिक्स होता है तो ये वायु का घटक बन जाता है। साथ ही में आपने कभी देखा होगा कि जब तेज आंधी तूफान चलता है तो आसपास की मिट्टी या फिर जो भी कूड़ा होता है वो उड़ने लग जाता है। तो ये जो धूल होती है ये सब भी वायु में मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद में ये वायु का घटक बन जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि धूल और धुएं के जो कण होते हैं ये भी वायु के घटक होते हैं। उसके बाद आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी की सभी गैस तो मौजूद होती ही हैं, लेकिन इनके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैसेस भी हमारे वायु में मौजूद होती हैं। और इन सभी अलग अलग गैसेस का कुछ निश्चित मात्रा होती है जो प्राकृतिक रूप से हमारे वायु में मौजूद होती हैं। और ये मात्रा जो होती है, अगर इस मात्रा में बदलाव आने लग जाता है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की निश्चित मात्रा होती है 0.03%, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे वायु में प्रदूषण हो गया है, वायु प्रदूषित हो गई है, जहरीली हो गई है। तो इसीलिए प्रकृति ये हमेशा कोशिश करती है कि इन सभी अलग गैसेस की जो अलग अलग मात्राएं हैं वो हमेशा निश्चित बनी रहे, वो बदले ना, ना वो बढ़े ना वो घटे। अगर ऑक्सीजन जितनी होती है 21% होती है, अगर ऑक्सीजन 21% से कम हो जाएगी तो हम जीव जंतुओं के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा, या फिर अगर हम यूं कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। इसीलिए हमारी प्रकृति हमेशा ये कोशिश करती है कि एक बैलेंस बना रहे, जितनी भी अलग अलग गैसेस हैं इनकी अपनी निश्चित मात्रा हमेशा मेंटेन रहे, हमेशा बनी रहे, यही कोशिश हमारी प्रकृति करती है। यहाँ पर आप लोग चित्र 17.2 पेज नंबर 140 में देख सकते हैं, आप लोगों को अलग अलग जो चीजें मौजूद होती हैं हमारे वायु में उन सभी की मात्राएं बताई गई हैं। जैसे कि नाइट्रोजन 78% होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है जो कि 21% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो होती हैं वो लगभग 1% होती हैं हमारे वायु में। उसके बाद आप लोगों को अगले ही पेज पर, मतलब कि पेज नंबर 141 पर एक टेबल में आप लोगों को बताया गया है कि नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और अन्य गैसेस जो होती हैं वो 0.97% होती हैं हमारे वायु में। और ये सभी के सभी गैसेस जो हैं, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें, ये सभी के सभी गैसें क्या हैं, ये वायु की घटक हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्योंकि इतनी सारी गैसें हमारे वायु में मौजूद हैं, इसीलिए वायु जो होती है वो अलग अलग गैसों का मिश्रण होती है। वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है और वायु स्थान घेरती है, उसमें भार होता है तथा दाब होता है। मैंने आप लोगों को वायु में भार होता है और दाब होता है का मीनिंग समझाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि वायु में भार होता है, इस बात का क्या मतलब होता है? आप लोगों को पता है कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती हैं उनका कुछ ना कुछ वजन होता है। आपका वजन होगा, आपके पेन का, पेंसिल का, आपके कागज का, हर एक चीज का वजन होता है। इसी तरीके से वायु का भी कुछ ना कुछ वजन होता है, तो वजन को ही भार कहा जाता है दूसरी भाषा में। तो वजन या भार दोनों एक ही बात है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वायु का कुछ ना कुछ वजन होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ भार होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि वायु दाब डालती है से क्या मतलब होता है। आप लोगों को पता है कि अगर आप तेज वायु में खड़े हो जाएं तो आपके बाल उड़ने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि वायु आपके बालों को पीछे की ओर ढकेलती है। या फिर किसी भी चीज के पास आप बहुत तेज वायु, बहुत वेग से वायु को छोड़ दें तो वहां पर क्या होता है, वो चीजें उड़ने लग जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वायु उन सभी चीजों को ढकेल रही है, उन पर कुछ फोर्स लगा रही है। तो फोर्स लगाना या फिर प्रेशर लगाना को ही हम दाब डालना कहते हैं। वायु उन सभी चीजों पर जोर लगाती है और इसी को कहा जाता है कि वायु आसपास की सभी चीजों पर दाब डालती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि वायु स्थान घेरती है से क्या मतलब होता है। ये हमने गतिविधि 2 के माध्यम से समझा था, जो कि पेज नंबर 141 पर है। इस गतिविधि में आपने क्या किया था, मैंने आपको कहा था कि इस गतिविधि को करने के लिए आपको एक खाली बर्तन लेना था और उसमें आपको पानी भर देना था और उसके साथ में आपको एक खाली कांच का गिलास लेना था और आपको उस खाली कांच के गिलास को सीधा ही पानी के अंदर डालने की पहले कोशिश करनी थी। और उसके बाद यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं किस तरीके से आपको डालना था। चित्र 17.3 पेज नंबर 141 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले गिलास को सीधा ही डालने की कोशिश की जा रही है। और आप जब ये गतिविधि कर रहे थे तो आपको ये समझ में आया था कि सीधा ही गिलास को पानी में डालना बहुत मुश्किल था और इसीलिए आपने क्या किया था, मुश्किल हो रहा था आपको गिलास को पानी के अंदर डालने के लिए, तो आपने क्या किया था, गिलास को थोड़ा टेढ़ा कर दिया था। यहाँ पर आप इसी चित्र में 17.3 चित्र में देख सकते हैं कि दूसरी स्थिति में आपने गिलास को थोड़ा टेढ़ा कर दिया था और टेढ़ा करते ही गिलास के अंदर पानी जाने लगा था। और जैसे ही गिलास के अंदर पानी जाने लगा था तो उसके साथ में कुछ बुलबुले गिलास से बाहर निकलने लग गई थी। तो आपने ये समझा था कि वो बुलबुले क्यों निकल रही थी। वो बुलबुले इसलिए निकल रही थी क्योंकि वो गिलास जिसे आप सोच रहे थे कि वो खाली है, एक्चुअल में, हकीकत में वो खाली नहीं थी गिलास। कोई भी चीज जो आपको लगती है कि वो खाली नहीं होती है, उसमें और कुछ नहीं भरा होता तो उसमें गैस भरी होती है, वायु जो होती है वो भरी होती है। तो क्योंकि ये खाली गिलास जो आपको खाली लग रही थी, ये खाली नहीं थी, इसमें वायु भरी हुई थी। तो जैसे ही आपने टेढ़ी की गिलास को, तो उसमें क्या हुआ, उसमें पानी जाने लग गई थी और उसी के वजह से उसमें से जो गैस थी गिलास के अंदर वो बाहर निकलने लग गई थी और वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लग गई थी और आपको बुलबुलें यहाँ पर दिखाई दी थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्योंकि खाली गिलास में या फिर किसी भी खाली जगह में, खाली रूम हो या फिर कोई भी खाली जगह हो, वो जगह खाली नहीं होती है, उसमें वायु भरी होती है। तो क्योंकि वायु भरी होती है पूरी गिलास में या फिर किसी भी खाली जगह में, तो हम कह सकते हैं कि वायु क्या करती है, वायु स्थान जो होता है उसमें रहती है, मतलब वो स्थान को घेरती है। उसके बाद आगे हम लोगों ने बात की थी कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैसें होती हैं वो कैसे प्रतिस्थापित होती हैं, मतलब कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे धरती पर होते हैं वो सभी के सभी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को वो लेते हैं जब वो सांस ले रहे होते हैं, और वो जब सांस ले रहे होते हैं उसमें से जब हम हवा छोड़ते हैं बाहर की ओर, सांस लेते वक्त ही एक बार आप हवा को अंदर लेते हो, अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हो और एक बार आप हवा छोड़ते हो अपने नाक से, तो वो हवा जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो होती है ऑक्सीजन, और वो हवा जो आप अपने नाक से निकाल रहे होते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी तरीके से जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं हमारे धरती पर, वे सभी के सभी जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, अपने भीतर लेते हैं और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और पेड़ पौधों में एक विपरीत घटना घटती है जब वो सूर्य की रोशनी में होते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करने लगते हैं और ऑक्सीजन की गैस को वो बाहर छोड़ने लगते हैं। ऐसा वो केवल धूप की मौजूदगी में ही करते हैं, और वो इस वक्त क्या कर रहे होते हैं, वो इस वक्त खाना बना रहे होते हैं। तो धूप की मौजूदगी में पेड़ पौधे अपना जब खाना बना रहे होते हैं तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन की गैस को बाहर निकालते हैं। और इन्हीं दोनों क्रियाओं की वजह से, ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं ये हर वक्त होती रहती हैं हमारे धरती पर। और जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो क्रिया होती है खाना बनाने की क्रिया, ये केवल और केवल धूप में हो सकती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्रियाएं जो हैं हमारे धरती पर ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को निश्चित बनाए रखने में हमारी मदद करती हैं। और इसीलिए कहा जा सकता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हम जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की गैस चाहिए होती है ग्रहण करने के लिए, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, और पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है जो उन्हें हमसे मिलती है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे खुद भी रिलीज करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वायु के अलग अलग उपयोग के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला उपयोग हमने पढ़ा था कि वायु वस्तुओं के जलने में सहायक होती है। आप लोगों को पता है कि वायु में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन चीजों को जलाने में मदद करती है। दूसरा उपयोग हमने पढ़ा था कि वायु जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की जरूरत हम लोगों को होती है सांस लेने के लिए, और ऑक्सीजन वायु में मौजूद होती है। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था कि वायु नावों को चलाने में, पैराशूट को चलाने में, ग्लाइडर तथा हवाई जहाज को उड़ाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ आदि जो चीजें होती हैं ये वायु के कारण ही उड़ पाती हैं। तो इतनी सारी चीजें जो हैं ये उड़ पाती हैं, क्यों? क्योंकि वायु में गति होती है और वायु की मौजूदगी की वजह से ही ये सभी चीजें उड़ पाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वायु फूलों के परागण में सहायक होती है या बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायक होती है। तो मैंने आपको बताया था कि परागण के बारे में आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। परागण एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए फूलों में फूल जो होते हैं बाद में जाके फल में परिवर्तित हो जाते हैं, और परागण की प्रक्रिया में सहायक होती है वायु। आपको बस इतना ही समझ लेना है। उसके बाद अगला है कि वायु बादल बनने तथा बादलों की गति के लिए आवश्यक होती है। तो ये बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्योंकि वायु में गति होती है इसलिए ये बादलों की गति के लिए भी सहायक होती है। उसके बाद आखिरी उपयोग था कि वायु की सहायता से पवन चक्की चलती है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। और इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इसी के साथ हमें आज की क्लास शुरू करनी है, और आज की क्लास में हमें सबसे पहले पढ़ना है पवन चक्की के बारे में। तो बच्चों, पवन चक्की क्या होती है? पवन चक्की होती है बहुत बड़े बड़े साइज के पंखे। आप लोग पेज नंबर 142 पर चित्र भी देख सकते हैं। पवन चक्की का आप लोगों को चित्र दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पवन चक्की होती है बहुत ही विशाल, बड़े बड़े पंखे होते हैं, और ये जो बड़े बड़े पंखे होते हैं ये जब घूमती है, इसकी जो चक्की होती है, जैसे आप लोगों ने अपने घरों में भी पंखा देखा होगा उसमें पंखुड़ी लगी होती है, तो इन विशाल पवन चक्कियों में भी बड़ी बड़ी, बहुत ही विशाल विशाल पंखुड़ियां लगी होती हैं। और जब तेज हवा चलती है तो ये पंखुड़ियां घूमती हैं, और जैसे ही ये पंखुड़ियां घूमती हैं तो क्या होता है, इनके घूमने की वजह से इनमें बहुत ज्यादा गति आ जाती है, ये बहुत तेजी से घूमने लगती हैं, और इनके घूमने की वजह से ही बिजली जो होती है, जो विद्युत होती है, वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, जब भी तेज हवा चलती है तो तेज हवा क्या करती है, पवन चक्की के पंखुड़ियों को घुमाने लगती है, और जब ये पंखुड़ियां जोर जोर से घूमने लगती हैं तो क्या होता है, इनके घूमने से हमारे पवन चक्की में कुछ ऐसी मशीन लगी होती है जो उस घूमने से कुछ एनर्जी पैदा होती है, और जो एनर्जी पैदा हो रही है उनके पंखुड़ियों के घूमने से, उस एनर्जी को बिजली में बदल दिया जाता है, और बिजली वो जो बनी है वहां पर उसका अलग अलग चीजों में उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि अगर हम एक ही पवन चक्की लगाएं कहीं पर तो उससे बहुत ज्यादा बिजली नहीं उत्पन्न होती, इसलिए बहुत सारी पवन चक्की को लगाना पड़ता है एक जगह पर अगर हमें बहुत सारी बिजली उत्पन्न करनी है तो। तो ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी पवन चक्की लगी हो उसे क्या कहते हैं, उसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। और राजस्थान के कई सारे जिलों में ये पवन ऊर्जा फार्म लगे हुए हैं, जैसे कि जैसलमेर में, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में, इन सभी जगहों पर ये पवन ऊर्जा फार्म है और वहां पर बिजली पैदा की जाती है पवन चक्की के इस्तेमाल से। उसके बाद बच्चों आगे हम लोगों को पढ़ना है जल के बारे में। हमारे धरती पर बहुत ज्यादा जल की मात्रा होती है, करीब हमारी धरती का 3/4 भाग जो होता है वो जल से बना होता है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि ये सारा का सारा जो जल है हमारी धरती पर, इनमें से पीने लायक जल बहुत कम होता है। बाकी सारा जो जल है वो कहाँ पर है, वो समुद्र में है या फिर महासागरों में है, मतलब कि उनका जो जल होता है वो पीने लायक नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि समुद्र का जल हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि उसमें नमक बहुत ज्यादा होती है और ऐसे जल को हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नमक होती है। पीने का पानी जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में हमारी धरती पर मौजूद है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है और समझना है कि आप कितने ज्यादा जल का उपयोग करते हैं। इसको आपको गतिविधि 3 के माध्यम से समझना है जो कि पेज नंबर 142 पर है। इसमें आपको बहुत आसान काम करना है, आपको ये सूची बनानी है कि आप अपने रोज कितना ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको अपने परिवार में चर्चा करनी है, बात करनी है और पता लगाना है कि खाना बनाने में, कपड़े धोने में, सफाई करने में, पेड़ पौधों को जल देने में, पीने में और नहाने में और इन सभी चीजों में कितना ज्यादा आप लोग एक दिन में जल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप लोग जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे कि आप लोग एक दिन में पूरे घर का कितना आप लोग पानी इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल कितना है आपके पूरे परिवार का, उसके बाद आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि एक इंसान पर, आपके घर के एक इंसान पर कितना पानी खर्च होता है। वो आप कैसे पता लगा सकते हैं, आपकी जो कुल संख्या आएगी पानी की एक दिन में आपका परिवार इस्तेमाल करता होगा, आप पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितना भी आपके पास पानी का अमाउंट आया है एक दिन में आप जो इस्तेमाल करते हैं उसको आपको भाग दे देना है, कितने से आप में, आपके परिवार में जितने भी लोग होंगे उतने नंबर से आपको भाग दे देना है। मान लीजिए कि आपका एक दिन का इस्तेमाल आता है पूरे परिवार का, कि आप लोग पूरा परिवार मिला के सारे दिन भर में आप लोग 200 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, और मान लीजिए आपके परिवार में 4 लोग रहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप 200 लीटर को 4 से भाग दे देंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका, जैसे ही आप भाग दे देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 50। तो इसका मतलब है कि आपके घर में एक इंसान के ऊपर 50 लीटर पानी खर्च होता है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। उसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है जल के स्रोत के बारे में। जल के स्रोत का मतलब है कि स्रोत वो जगह होती है जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोगों को कोई कहे कि रोशनी का स्रोत क्या होता है, तो धरती पर अगर धूप की बात की जाए तो धूप से जो रोशनी होती है तो स्रोत कौन है, किससे निकल रही है वो रोशनी, वो रोशनी सूरज से निकल रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि सूरज जो होता है धरती पर रोशनी का वो स्रोत होता है। या फिर आपके घरों में मान लो बल्ब आपने लगा रखा है और बल्ब से आपके घर में रोशनी हो रही है तो आप कह सकते हैं कि बल्ब है आपके घर के रोशनी का स्रोत। तो इसी तरीके से स्रोत का मतलब है कि वो जगह है जहां से किसी चीज का प्रादुर्भाव हो रहा है, कोई चीज जो उस जगह से उत्पन्न हो रही है। तो इस तरीके से जल के स्रोत का मतलब है कि कहां से आपको जल मिलता है, किस जगह से। तो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारी धरती पर जल करीब 3/4 हिस्सा जो धरती का है वो पानी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर में जो जल आता है वो कहां से आता है, आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका स्रोत क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नल से पानी आता है। नल से पानी आ रहा है आपके घर में, लेकिन उस नल में कहां से पानी आ रहा है। तो अगर आपसे स्रोत की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्रोत बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत निश्चित होते हैं, कुछ जगहों से ही हमें पानी मिलता है, जैसे कि समुद्र से, नदी से, झील से, हैंडपंप से, कुओं से, बावड़ी से या फिर टांकों से। तो ये सभी के सभी जगह हैं जहां से हमें पानी मिलता है, इसीलिए इन सभी जगहों को हम पानी के स्रोत कह सकते हैं। और उसके बाद भी इनमें से काफी सारा पानी ऐसा होता है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि जो समुद्र का पानी है या फिर महासागर का पानी है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको आप पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो पानी होता है ये खारा होता है, इसमें नमक बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद हम बाकी के स्रोतों की बात करें, जैसे कि बावड़ी, झील, नदी, झरने, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल मतलब कि हैंडपंप जो होता है, इनसे जो हम पानी प्राप्त करते हैं ये पीने योग्य होते हैं। लेकिन इन सभी स्रोतों से जो पानी हम प्राप्त करते हैं ये पानी हमारे धरती पर बहुत कम मात्रा में मौजूद है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा ये समझाया जाता है कि आप लोगों को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर ही आपको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अब हम आगे बात करें कि जल के अवयव क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि वायु जो होता है वो अलग अलग चीजों से मिलकर के बनता है, मिश्रण होता है वायु अलग अलग गैसों का, उसी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है कि जल किस चीज से मिलकर के बनता है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो H2O है इसको बनने के लिए दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के परमाणु चाहिए होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हैं, मतलब कि इसके अलग अलग गुण क्या हैं। रासायनिक गुण वो गुण होते हैं जो हमें किसी भी चीज के रासायनिक क्रिया करवाने के बाद पता चलता है, केमिकल रिएक्शन करवा लेने के बाद हमें पता चलता है किसी भी चीज के रासायनिक गुण के बारे में। और भौतिक गुण वो गुण होते हैं जो आपको देख करके पता चल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो जल होता है वो रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, गंधहीन होता है, इसकी खुद की कोई खुशबू या फिर बदबू नहीं होती है, स्वादहीन होता है क्योंकि इसका खुद का कोई स्वाद नहीं होता है, पारदर्शक होता है। तो ये सभी के सभी जो गुण हैं ये क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण हैं, क्योंकि ये गुण आप लोगों को केवल इन्हें देखकर ही पता चल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक मतलब कि वो तापमान जिस पर जल जो है वो भाप में परिवर्तित हो जाए। आप लोगों को पता है आप जो पानी रखते हैं उसे जब आप उबालते हैं, अब आप जब आप उसको बहुत ज्यादा उबाल देते हैं तो क्या होता है, वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब घर पे खाना बनाती हैं तो जैसे ही गरम गरम खाना वो परोसती हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, भाप जो होती है वो आप लोगों को साफ नजर आने लग जाती है। तो वो भाप कुछ और नहीं है, वो पानी है जो कि इतना ज्यादा तापमान उसे मिला है कि वो भाप में परिवर्तित हो गया है। तो कभी भी आप पानी को जब उबालते हैं तो आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो जब आप पानी को इतना ज्यादा गर्म कर दें कि वो भाप में परिवर्तित हो जाए तो उसी तापमान को उसका क्वथनांक कहते हैं। और पानी का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद अगला है हिमांक। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि वो तापमान जिस पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए वो उसका हिमांक कहलाता है। और पानी का हिमांक कितना है, पानी का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे आसपास जितना भी पानी होगा वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है और वो ये है कि बर्फ जब जम जाती है तो बर्फ होती तो ठोस है लेकिन उसके बावजूद भी बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर एक गतिविधि करने के लिए कहा गया है, गतिविधि 4, ये पेज नंबर 143 पर है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक गिलास लेना है और गिलास में आपको आधा गिलास पानी भर देना है और उस आधे गिलास में जिसमें आपने पानी भरा हुआ है उसके ऊपर आपको कुछ गिलास बर्फ के कुछ टुकड़े डाल देने हैं। जैसे ही आप उस आधे पानी भरे गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डाल देंगे तो आप ये देखेंगे कि पानी के ऊपर बर्फ तैरने लग जाती है। तो कोई भी चीज अगर पानी के ऊपर तैर रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस चीज का घनत्व पानी से कम है, वो पानी से हल्का है। क्योंकि हल्की चीज जो होती है वो ऊपर तैरने लगती है और भारी चीज जो होती है वो नीचे जाके सतह पे बैठ जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बर्फ जो होती है वो पानी से हल्की होती है, इसका घनत्व पानी से कम होता है और इसीलिए ये पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। उसके बाद आगे आपको समझना है कि पानी को विलायक के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। विलायक मतलब कि पानी एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी हम घोल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपसे अगर बात की जाए कि आपके घरों में जब मेहमान आते हैं तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके मेहमान के लिए शरबत बनाती हैं, तो वो पानी में चीजों को मिक्स कर देती हैं, उसमें वो मीठी चीनी मिला देती हैं, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिला देती हैं। तो पानी में कुछ भी मिला दो तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पानी विलायक होता है, पानी में चीजें मिक्स की जा सकती हैं, इसीलिए पानी को विलायक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग गतिविधि 5 के बारे में बात करेंगे। ये पेज नंबर 143 पर है। इसमें आपको एक बहुत आसान गतिविधि करनी है। आपको एक गिलास पानी लेना है और उसमें आपको पहले नींबू मिलाना है, फिर थोड़ा सा चीनी मिलाना है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। चम्मच की मदद से आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से घोल लेना है। आप थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि पानी के अंदर आपने जो नींबू मिलाया है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, जो आपने चीनी मिलाया है वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि चीनी जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस रूप में होता है, वो भी पानी में मिक्स हो जाता है और नींबू का जो रस होता है वो द्रव रूप में होता है, वो पानी के जैसा ही होता है तो वो भी पानी में मिक्स हो जाता है। और उसके बाद मैं आपसे बताऊं कि जल जिसमें मछली वगैरह होती है या फिर जो छोटे जीव जंतु होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं, वो जल में कैसे रह पाते हैं? वो जल में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि जल में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जल में गैस भी मिली हुई है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो गैस के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पानी में गैस, द्रव्य और ठोस तीनों की तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं और इसी वजह से हम पानी को एक सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। पानी एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी चीज को मिक्स करें वो आसानी से मिक्स हो जाता है और इसीलिए हम लोगों को क्या कहना होता है कि पानी एक विलायक है। और क्योंकि पानी में आप कोई ठोस चीज मिक्स करो जैसे कि चीनी, वो भी मिक्स हो जाता है, कोई दूसरा पानी जैसे रूह अफ़ज़ा मिक्स करो तो वो भी मिक्स हो जाता है और उसमें गैस भी मिक्स हो जाती है, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि पानी एक सार्वत्रिक विलायक है। तो इसी के साथ बच्चों मैं आज की क्लास यहीं पर खत्म कर रही हूँ। और आपको क्या करना है, आपने जो आज की क्लास में पढ़ा है उसको आपको खुद से एक बार रिवाइज कर लेना है। कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।